देवियों सज्जनों, मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन् कुले नित्यं कल्याणं तत्र वैध्रुवम्। जिस फैमिली में, जिस परिवार में पति से पत्नी संतुष्ट हो, पत्नी से पति संतुष्ट हो, उस घर में हर हाल में अच्छा ही अच्छा होता है। जब हमारी आपकी सब शादी हुई थी, शादी में जो सबसे पहला रिचुअल होता है, कन्यादान के बाद दुल्हा दुल्हन दोनों एक दूसरे को एक मंत्र बोलते हैं, मिलके बोलते हैं, समंजन्तो विश्वे देवाः समापो हृदयानिनौ सम्मातरीश्व संधाता समुदेष्ट्री दधातु नौ। ऋग्वेद का मंत्र है, इसका सिंपल मीनिंग है कि वो ईश्वर सारे संसार में हर तरह के पहले हुए प्राकृतिक अप्राकृतिक शक्तियां, हमारे मित्र बंधुजन सब, हमारे जो हम दोनों आज एक दूसरे के साथ मिलने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद करें और हमारा हृदय, हमारा दिल ऐसा मिले जैसे पानी एक दूसरे के साथ मिलता है। दुनिया में कोई भी चीज जो बनता है ना, बना है, वो दो अपोजिट चीज से ही बनता है। वैसे तो हम बड़े अपोजिट चीजों से बड़े दूर रहने की कोशिश करते हैं, पर ये सिर्फ आपकी लाइफ नहीं, दुनिया का हर चीज इंक्लूडिंग योर एंड माय लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट थिंग्स। आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट थिंग्स है। एक बॉडी है जो मैटर है, जड़ है, एक आत्मा है जो चेतन है। दोनों के साथ कोई, दोनों के क्वालिटी में, नेचर में, एट्रीब्यूट्स में कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है, पर दोनों जब एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं तो एक खूबसूरत लाइफ बनता है, एक सुंदर जीवन बनता है। दुनिया में कोई भी चीज देखिए, हमें सूरज की धूप चाहिए तो चांद की ठंडी ठंडी किरण भी चाहिए, हमें रात की भी, अगर केवल दिन ही दिन होता, रात नहीं होती तो जीवन कैसा होता, रात ही रात होती दिन नहीं होता तो जीवन कैसा होता। ठंडा का महत्व तभी है जब गर्मी का पता चले, गर्मी का भी आनंद तब हो जब किसी को ठंड का पता चले। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोनेंट नहीं है, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। और हमारी पूरी फैमिली लाइफ भी दो अपोजिट चीजों का मिलना होता है। नेचुरली दो अपोजिट जेंडर होते हैं, एक पुरुष होता है, एक स्त्री होता है, अलग अलग इमोशन के साथ रहते हैं। स्त्री का अपना मन है, पुरुष का अपना मन होता है, दोनों के इमोशंस अलग होते हैं, वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है, नेचुरल है। पर दोनों जब मिलते हैं तभी एक खूबसूरत परिवार बनता है। और सिर्फ इतना नहीं है कि हम जेंडर से अलग रहते हैं इसे तभी मिलते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग संस्कार से, संस्कृति से, सोच से, समझ से, एजुकेशनल बैकग्राउंड से, कल्चरल बैकग्राउंड से। और बड़े मजेदार बात है, हमारे शास्त्रों में और हमारे पूर्वजों का मानना है कि जितना पुरुष और स्त्री जितने दूर के होंगे, जितने ज्यादा उनमें फर्क रहेगा उतना अच्छा परिवार बनता है। इसीलिए जो सगोत्र विवाह की एक गोत्र में शादी नहीं करना, एक परिवार में शादी नहीं करना, ये कंसेप्ट इसीलिए था क्योंकि जितनी डिफरेंस रहेगा, जितने दूर का रिश्ता होगा, जितने दूर से बनेगा उतना अच्छा खूबसूरत मिलन होगा। पर जब मिले तो कैसे मिले? शादी के द्वारा जब मिलते हैं तो दोनों ये कामना करते, मंत्रों के द्वारा ऋषि कहते हैं कि पानी की तरह मिले। ये पानी का एग्जाम्पल क्यों दिया? और किसी का एग्जाम्पल दे सकता था? बहुत नियरेस्ट एग्जाम्पल ले समझने के लिए कि दो अपोजिट, दो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जब मिलते हैं तो क्या होता है। जैसे दो अलग अलग नदियों की पानी हो, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग मटेरियल साथ में लेकर के आते हैं, पर जब एक बार गंगा यमुना मिलती है या गंगा के साथ कैस्पियन मिलता है या कोई भी दुनिया के दो अलग अलग सोर्स से पानी जब मिलते हैं, फिर हम और आप कोई उसको अलग नहीं कर सकता ना। फिर आप नहीं कह सकते कि ये गंगा की पानी है, ये यमुना की पानी है, फिर नहीं अलग कर सकते। फिर उनका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, एकाकार हो जाते हैं। वो दोनों मिलके एक अलग, एक यूनिक बैकग्राउंड बनाते हैं अपने फ्यूचर जेनरेशन के लिए। हर पति पत्नी अपने आप में एक सोर्स बनता है अगले जेनरेशन के लिए। जिस सोर्स से वो आते हैं उसमें कितने भी डिफरेंसेस हो, कितनी भी वेरिएशंस हो, वो सब मिल जाते हैं। जब ये यूनिटी ऑफ हार्ट की कल्पना करते हैं, मंत्रों में हम प्रार्थना करते हैं कि पुरुष और स्त्री हम दोनों ऐसे मिले जैसे पानी की तरह, तो फिर वो बड़ा खूबसूरत परिवार होता है। परिवार में प्रॉब्लम कहां से? शुरू की पैदाइश तो यहीं से होता है, आगे तो जाकर और बहुत सारी समस्या आती है। मेरा खानदान तुम्हारा खानदान, मेरे मां बाप तुम्हारे मां बाप, मेरे भाई बहन तुम्हारे भाई बहन। जब एक बार पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो फिर सबके भाई बहन सबके हैं, सबके मां बाप सबके हैं, सबके रिश्तेदार सबके हैं। अब मेरे तेरे नहीं होना चाहिए। और जहां तक होता है उस घर में फिर क्लेश होता है। जब मिले तो पानी की तरह कि सब कुछ एकाकार हो जाए। इसलिए मंत्र कहता है समंजन्तु विश्व देवा समापो हृदयानिनो। हमने एक छोटी सी कहानी सुनी थी, पतिदेव ऑफिस से लेट आए, 6 बजे आना चाहिए, 7 बज गया, 8 बज गया, पत्नी जी फोन घुमा रही है, फोन नहीं उठा रही साहब, तो गुस्से में लाल पीले होकर बैठे, 9-10 बज गया है और दिमाग में बहुत सारे डाउट्स खिल रहे हैं, कहां गए होंगे। 10-10:30 बजे दरवाजे में कलिंग बेल बजा, तो पत्नी जी गुस्से में बैठी रही, खोली ने, इतनी देर से आए तो गुस्से में, तो थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलते ही सारा का सारा बम फूट पड़ा। ये टाइम क्या है? आने का टाइम होता है, कहां गए हुए थे, फोन क्यों स्विच अप रखा था, हजारों सवाल झड़ियां लग गई। पति देव ने बोला बस मैं अंदर आकर बताता हूं, बस रहने दो। नहीं नहीं, आप बताओ 10 बजे तक आने का क्या मतलब है, कहां थे? घर गया था। घर? मुझे बिना बताए घर चले गए? मां को लाने गया था। तुम्हें शर्म नहीं आता है? मां को लेने चले गए बिना बताए मुझे? 8,000 की तनख्वाह है, बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती है, शौक चढ़ गया मां लाने को, मां को लाने चले गए। पत्नी उमल पड़ी, उबड़ पड़ी, बहुत सारी सुनाई, सुनाती जा रही थी। पति देव बोले सुनो तो सही। क्या सुने? क्यों तुम्हें लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे भाई, उसके साथ बहुत ट्रेजेडी हुई है, बहुत समस्या हुई है, समस्या हुई तो तुम्हारे बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, तुम ही हमेशा मिल जाते हो ख्याल रखने के लिए। तभी अंधेरे से पीछे से महिला सामने आई, बोली बेटी। बीवी ने देखा, बोला मां तुम कहां आ गई? जी क्या करे, तुम्हारे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया, तब क्या करूं। दामाद जी को फोन लगाया तो दामाद जी फटाफट ऑफिस से आ गए, उन्हीं के साथ आ गया। बोली डार्लिंग, अपने बताया नहीं क्या मेरी मां को लाने गए थे? देवियों सज्जनों, जब शादी के बाद मेरी मां तुम्हारी मां बनी रहे तो शादी अधूरी रहती है, घर में 100% क्लेश तो बना ही रहता है। जब तुम्हारी मेरी मां एक हो जाए, तुम्हारे मेरे पापा एक हो जाए, तुम्हारे भाई बहन मेरे भाई बहन एक हो जाए, तो एक होने का मतलब पानी की तरह ये नहीं कि मैं और तुम एक हुए, हमारे अकाउंट एक हुआ, बाकी सब अलग रहे। जब सब एक होता है तब फैमिली सुंदर होता है। फैमिली में और एक जो समस्या है जिसको हमें एड्रेस करनी होती है, और जो अच्छे कपल हैं ये उन्हीं का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। क्योंकि कोई भी यूनिटी हो वो दो अलग अलग चीजों से होता है, अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड है। हर बात पर एक दूसरे के साथ राजी होना जरूरी नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसकी थोड़ी बहुत अकल है वो आपके साथ 100% राजी नहीं हो सकता। अगर कोई राजी कराने की कोशिश करता है उससे ज्यादा क्रूर क्रूएल और कोई हो नहीं सकता, वो तो सिर्फ कोई डेविल नेचर का व्यक्ति, वो हिटलर हो स्टालिन हो, ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहता होगा कि सब जैसा मैं सोचता हूं मैं मानता हूं वैसा ही दुनिया सोचे, हो ही नहीं सकता। नेचुरली फैमिली में भी असंभव है। इसलिए ये जरूरी है एक्सेप्ट करना। बहुत सारी चीजों में हमारी एग्रीमेंट होता होगा, हम दोनों एक चीजों पर सहमत होते होंगे, पर ऐसे सैकड़ों चीजें होंगे जहां पति और पत्नी का विचार ना मिलता होगा। पर वो विचार ना मिलने को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर लाइफ सुंदर होता है। ये एक्सेप्ट करना कि उसमें डिसएग्रीमेंट होना स्वाभाविक है, ये बड़ी जरूरी है। वहीं से अगर ईगो आता है रिलेशनशिप में तो वो खतरनाक होता है। तो इसलिए ये मानना बड़ी जरूरी है, जब दो अलग अलग लोग मिलते हैं, एक यूनिटी बनाते हैं, तो उसमें एक स्कोप होना चाहिए। एक दूसरे जिन मामलों में एग्री करते हैं और जहां पर हम डिसएग्री रखते हैं, जब इस बात की क्लियरेंस हो, क्लैरिटी हो, तो फिर रिलेशनशिप ज्यादा सुंदर होता है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ पति पत्नी की बात है, वो पेरेंट्स के साथ बच्चों का हो, वो ऑफिस में दो अलग अलग कॉलिग का हो, वो किसी भी संसार में किसी भी रिलेशनशिप में ये सब मायने रखते हैं। पर बाकी रिलेशनशिप कभी कभी वो टेम्पररी होते हैं, हम साथ हमेशा 24 घंटे नहीं रहते हैं। इवन मां बाप और बच्चों के रिलेशनशिप में भी जो साथ रहना है वो जिंदगी भर नहीं होता है, पर सिर्फ पति और पत्नी की रिलेशनशिप जो है जो आप जिंदगी भर तक निभाते हैं। और इसीलिए इस रिलेशनशिप की नाजुकपन बहुत होता है, उसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए भी बहुत सारे चीजें एक दूसरे के साथ नेचुरली ऐड करने की जरूरत है, न कि आर्टिफिशियली ड्रामा करने की जरूरत है। यह भी बड़ा सुंदर ऋग्वेद का मंत्र है। शादी के समय कपल बोलते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों बोलते हैं, अमोहम अस्मि सात्वम सात्वमसि अमोहम सामाहम अस्मि रिक्त्वम
द्यौरहम् पृथिवी त्वम् तावेव विवहावहै सहरेतो दधावहै प्रजाम् प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहुन् ते सन्तु जरदष्टयः।
पति पत्नी से कहता है, जो दुल्हा है दुल्हन से कहता है, ओ ब्राइड आई हैव एक्सेप्टेड यू थॉटफुली एंड सो हैव यू एक्सेप्टेड मी, आई एम द सेंटेंस एंड यू आर द ट्यून। संस्कृत इज कॉल सा एंड अम एंड सेम टर्न दैट यू आर द सा इन द सेंटेंस आई एम द अम द ट्यून विच फॉर्म साम वेद। जो चार वेद हैं उनमें सामवेद उपासना का वेद है, गान का वेद है, म्यूजिक का वेद है। तो साम में जो दो अक्षर है कि साम, ऋषि उसको डिस्क्राइब करते हैं, वो सा सेंटेंस है, अम ट्यून है, जब दोनों मिलते हैं तो साम बनता है, म्यूजिक बनता है। तो तुम सा हो तो मैं अमा बन जाऊंगा, अगर तुम अमा बनो तो मैं सा बन जाऊंगा, पर दोनों कोई कुछ भी बने आफ्टर ऑल हमें साम है, म्यूजिक बनानी है। आई एम द साम एंड यू आर ऋग्वेद, आई एम स्पेस यू आर द अर्थ, मैरी ईच अदर प्लीजेंटली मे यू बी ब्लेस्ड विथ ब्राइट हेरोइक लॉन्ग लिव चिल्ड्रेन। दुनिया में किसी भी चीज को देखिए जिनसे हमारे असत्ता है, एक आकाश है तो एक पृथ्वी है, एक सूरज है एक चांद है, एक दिन है तो एक रात है, एक ठंडा है तो एक गर्म है, दोनों की जरूरत है। कभी कोशिश मत करिए कि इनमें से किसी चीज को मैं दूर कर दूं क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, कोई बहुत सॉफ्ट है तो कोई बहुत स्ट्रिक्ट हार्ड है, दोनों की जरूरत है। ये कोशिश ही मत करिए कि उसको मैं उखाड़ के फेंक दूं क्योंकि हार्डनेस अच्छा मुझे नहीं लगता, मैं बाय नेचर सॉफ्ट हूं तो हार्ड नहीं होना चाहिए, या बाय नेचर मैं हार्ड हूं तो सामने वाला सॉफ्ट ना हो, दोनों की जरूरत है। ठंडा भी गर्म भी दोनों की जरूरत होती है। ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो फिर ना ठंडा रहता है ना गर्म रहता है, ना वो सूरज रहता है ना चांद रहता है, ना वो पुरुष रहता है ना स्त्री रहता है, वो एक अलग कॉम्बिनेशन होता है। और वो जो अलग सृष्टि होती है, जो जनरेशन होता है, वो बड़ा खूबसूरत होते हैं, वो आपके बच्चे होते हैं और वो पूरा का पूरा परिवार है। वो परिवार जो फैमिली आपकी है वो सिर्फ आपका घर नहीं है, वो आपके सिर्फ बच्चे नहीं है, उसमें आप अकेले नहीं हो, आपके पति या पत्नी नहीं है, उन सबका कॉम्बिनेशन है और उन कॉम्बिनेशन को आप फैमिली कहते हैं। वो जो कॉम्बिनेशन है, जो यूनिटी है, वो ना आप हो ना आपकी पति या पत्नी है, ना बच्चे हैं ना घर है, उन सबका एकाकार रूप है। इट्स समथिंग यूनिक बट मेड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। इसको वेदों में कहते हैं चक्रवाके व दंपति, दंपति कहते हैं कपल। कपल कैसा होता है? बोले जैसे चक्रवाक है, एक चकुआ पक्षी है। लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर में, संस्कृत हिंदी बंगाली हर लिटरेचर में इसकी काफी वर्णन होता है। प्राचीन काल के एग्जाम्पल्स होते हैं कि एक कपल कैसे होना चाहिए, बोले चकुआ की तरह। वो चकुआ चकोई क्या होती है, उनकी खास बात है कि वो रात भर तो वो दिन रात में ही देख पाते हैं, रात भर अपना काम करते हैं, दिन में वो कहीं जा नहीं पाते हैं। पर वो जहां भी बैठते हैं उनका मुंह एक दूसरे की ओर होता है, वो एक दूसरे को की ओर मुंह होता है, नेचुरली होता है। और एक अगर मर जाए अगला भी साथ में ही चला जाता है। तो इन दोनों का जो यूनिटी है, जो दोनों का एक दूसरे के प्रति एक नेचुरल प्रेम है, वो इतना इतना सटीक है, इतना इतना प्रबल है कि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, कवियों ने उस दंपति को बोला कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बनो, एक दूसरे के लिए ये ही हो जाओ। जब ये हो जाता है फिर समस्या फिर तुम्हारा तुम्हारा नहीं रहता है ना, फिर मेरा भी मेरा नहीं रहता है, फिर हम एकाकार हो जाते हैं। इसी को हमारे पुराणों में, माइथोलॉजी में अर्धनारीश्वर की कंसेप्ट बताया। कभी आपने शिव की मूर्ति देखी होगी कभी, जिसको अर्धनारीश्वर कहते हैं, मतलब एक नारी, वो शिव की जो मूर्ति है उसके आधा हिस्सा तो स्त्री का है और आधा हिस्सा जो है पुरुष का होता है। वो एक ही व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति कौन है? ये संसार है, जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं द कॉस्मिक बींग, जो संसार रूपक जो परम पुरुष है। वो परम पुरुष दो चीजों से बना है, पर दो अलग अलग चीजें नहीं है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए उस मूर्ति में आप दिखते हैं एक नारी का शरीर है, आधा आधा पुरुष का शरीर है। ये जो दोनों मिलते हैं तो वो यूनिवर्स होता है। थोड़ा फिलोसफिकली आपको बताएं, ये जो संसार बना है, हमारे फिलोसफी में, हिंदू फिलोसफी में इसको बोलते हैं पुरुष और प्रकृति, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। पुरुष परमात्मा है, प्रकृति मैटर है, परमात्मा चेतन है। चेतन और जड़, इन दोनों का मिलावट संसार होता है। पर उनकी जो जेंडर चुना गया, वो जड़ को स्त्री जेंडर बनाया, प्रकृति, और जो आत्मा है उसको पुरुष कहा, मेल जेंडर है। एक मेल है, एक फीमेल है, दो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर जब मिलते हैं तो वो अर्धनारीश्वर होता है। तो आपका परिवार अर्धनारीश्वर का परिवार है, उसमें पुरुष की महत्ता नहीं है, उसमें स्त्री की महत्ता नहीं है, उसमें दोनों की महत्ता है। दोनों की सिंगुलरिटी होनी जरूरी है। वो सिंगुलरिटी के अंदर काफी डिफरेंसेस होंगे, पर आफ्टर ऑल बाहर से वो सिंगुल, जैसे ये घर बना है, ये आफ्टर ऑल इट्स ए सिंगुलरिटी है, ये एक घर है, पर इस घर के अंदर हजारों चीजें हैं जो एक दूसरे से अलग है। लाइट की अपनी अपना काम अलग चीज है, एसी का अपना काम है, जो पेंटिंग है वो अलग काम है, लोहे का अपना नेचर है, ईंट का अपना नेचर है, सभी का अपना कंट्रीब्यूशन है। आप कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे, ईंट की नेचर को छोड़ने की कंप्रोमाइज करेंगे, लोहे को कहेंगे कि तुम ईंट बन जाओ, ईंट को बोलेंगे कि तुम बल्ब बन जाओ, तो आपका घर टिकेगा नहीं। सबको अपने अपने नेचर के साथ रहना पड़ेगा, और उन नेचरों को एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करके जब अच्छी तरह उनको बनाते हैं तो एक खूबसूरत घर बनता है, तो आप उसके लिए प्राउड फील करते हैं। यही एग्जाम्पल हमारे आपके घर में भी होता है। जब हर डिफरेंशिएशन के साथ भी हम साथ लेकर के एक यूनिटी बनाते हैं तो वो घर बनता है। हमेशा ध्यान रखिएगा दैट स्ट्रॉन्गर मैरिज रियली हैज टू स्ट्रांग पीपल एट द सेम टाइम। दोनों स्ट्रांग हो सकते हैं, पति पत्नी दोनों अपने आप में स्ट्रांग है बाय नेचर, विल पावर से, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, किसी भी मामले में दो स्ट्रांग हो सकते हैं, पर ए सिंगुलर मोमेंट, पर एक खास मोमेंट पर दोनों में, दोनों अगर स्ट्रांग रहेंगे तो कभी भी घर नहीं चल सकता। एक ना एक को तो सॉफ्ट होना पड़ेगा। जब आज मेरी बारी पड़ी है स्ट्रांग होने की, तो मेरे अपोजिट जो है स्पाउस है उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आज वो स्ट्रांग है तो मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जब लड़ाइयां होती है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ये कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। और पति पत्नी की लड़ाई तो दुनिया में फेमस है, घर घर में फेमस है ना नहीं? उस लड़ाई के अंदर प्यार छुपा होता है। पर उस प्रॉब्लम कहां होता है? जब उस लड़ाई में दोनों स्ट्रांग बन जाते हैं, दोनों का ईगो कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। पर समझदार आदमी वही है, समझदार व्यक्ति वही है जो एक समय समझ लेता है कि सामने वाला झुकने को तैयार नहीं तो मैं ही झुक जाता हूं, अगले पल कल तुम्हारा नंबर आएगा, तुम अड़ जाना, उस वो झुक जाएगी। पर एक ही समय में दोनों स्ट्रांग रहेंगे तो कभी नहीं चल सकते हो। किसी ना किसी को तो नेगेटिव बनना पड़ेगा एक को पॉजिटिव रखने के लिए, तभी आपके घर में बिजली आ सकती है। दोनों पॉजिटिव रहेंगे, दोनों नेगेटिव रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। एक को तो दोनों स्ट्रांग, अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट वन शुड बी वीक। हम पर्सनालिटी में दोनों ही स्ट्रांग हो वो अच्छा है, पर जब कंफ्लिक्ट हो एक ना एक को तो झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा, अपने सॉफ्ट लिस्ट लाना पड़ेगा। इट्स यूजुअली हस्बैंड एंड वाइफ टेकिंग टर्न्स बीइंग स्ट्रांग फॉर ईच अदर इन द मोमेंट्स व्हेन द अदर फील्स वीक। और वो जो वीकनेस हम दिखाते हैं वो हमारी वीकनेस नहीं होता है, वो कंप्रोमाइजिंग नहीं होता है, वो स्मार्टनेस होता है, वो आपका रेस्पेक्ट है सामने वाले के प्रति, वो आपके सामने वाले के प्रति प्यार है जो आप अपने आप को झुका देते हो।
कभी मत समझिए। परिवार में जब आप कंप्रोमाइज करते हैं, पति के सामने पत्नी या पत्नी के सामने पति या बच्चों के सामने पेरेंट्स या पेरेंट्स के सामने बच्चे, वो कोई ईगो की लड़ाई नहीं है, वो कोई वीकनेस का लक्षण नहीं है, वो प्यार का लक्षण है। जब भी आप सरेंडर करते हैं, जब भी आपकी गलती ना होने पर भी आप गलती मान लेते हैं, तो आप अपने प्यार दिखाते हैं, आप अपना रिस्पेक्ट दिखाते हैं। और जब ये बनता है, एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट या लव होता है, तो फिर जीवन और सुंदर होता है। दूसरी जो हमारी डेली लाइफ में और एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि ये देखिए इनमें इतने, ये 24 घंटे अखबार पढ़ते रहते हैं, घर को तो कचड़ा बना रखा है। घर में लड़ाई इसी बात की होती है कि पतिदेव बहुत मैगजीन और अखबार पढ़ते हैं, कुछ करिए। घर में लड़ाई इसी बात की है कि ये ऐसे, ये बाल ऐसे कंघी नहीं करते हैं, वे ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, वो ये नहीं करते हैं। अब कब शिकायत करते हैं? क्या बदलाव की एक्सपेक्ट करोगे जो जिंदगी भर नहीं बदल पाया? और ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके कि घर में भूचाल आ जाए, पर भूचाल रोज आता है। क्यों आता है? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वो क्यों नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं। इंसानों में कुछ नेचर होता है जो मुश्किल होता है चेंज कर पाना। उसको छोड़ दें, उसको उस गलती के साथ एक्सेप्ट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम बच्चों के साथ भी, और हमारी समस्या देखिएगी, हम आज ए पेरेंट्स बच्चों की तो बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर वो सुधरते नहीं है फिर कहते क्या मेरा बच्चा तो चलो ऐसी है, चलो। पर ये मेरा बच्चा ऐसा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते अपने पति के बारे में, पत्नी के बारे में। चलो छोड़ो, मेरे पति है ऐसा ही है या मेरी पत्नी, नहीं, वहां तो कंप्रोमाइज नहीं हो पाता है। फिर होता क्या है, एक कंस्टेंटली कंफ्लिक्ट बना रहता है। और ये भूल जाते हैं कि ये पार्ट ऑफ नेचर है, ये आपके घर में नहीं है, वो सबके घर में है। अब अगर सबके घर में है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर है। कुछ चीजें होती है जो बदलती नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लेना अच्छा है। जब नई नई शादी करके आते हैं तो बड़े सारे ख्वाब देखते हैं शादी से पहले भी। क्या कि मैं जो शादी है वो एक, वो हिंदी में कहते हैं, शादी का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। कि शादी का लड्डू कुछ ऐसा है कि जो बड़े बहुत सुहावना है। लाइफ कभी सुहावना नहीं होता है, उसमें अप्स हैं, डाउन्स हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। शादी से पहले की जो रिलेशनशिप है नेचुरली वो ज्यादा सुहावना है, क्योंकि उसमें एक दूसरे को इम्प्रेस करने की काफी कोशिशें रहती है, कहीं छोड़ के भाग न जाए। खैर अमेरिकन सोसाइटी में ये भी कहना मुश्किल है कि शादी के बाद वो नहीं होगा, तो यहां तो ऐसी भी आती है कि भाई इसको तलाक देना है, क्यों? क्योंकि मैं जब भी टेक्स्ट भेजता हूं वे उसका आंसर नहीं करता है, इसलिए मैंने इसको तलाक देना है। कि क्यों तलाक देना है, इसको तलाक दिया कि जो स्नोरिंग करता है रात भर, इसको तलाक क्यों दिया? ये शादी को मेरे 5 साल हो गया, वो 3 बार मेरा बर्थडे भूल चुका था, मुझे रिमाइंड कराना पड़ा। तो ऐसे कौन सा पति है, इसे नहीं रखना है। तो खैर वो तो, इसका तो कोई भगवान भरोसे नहीं है। और ऐसे लोगों की जिंदगी, ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों की जिंदगी कभी खुशी से भरा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कभी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो 100% परफेक्ट हो, जो आपके एक्सपेक्टेशन से चलता हो, असंभव है। आप तलाक करते रहिए, जिंदगी भर तलाक करते रहेंगे, और जिसके साथ आपने लाइफ लॉन्ग रहने की सोचा उसके साथ भी आपको आफ्टर ऑल वही करना पड़ा जो आप पहले दो के साथ करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक्सेप्ट कर लेना कि शादी कोई लड्डू नहीं है, वहां भी अच्छी है बुरे चीजें हैं, अप्स हैं डाउन्स हैं, चलता रहता है। जब ये रियलिस्टिक अप्रोच रहता है तो लाइफ खूबसूरत होता है। और एक बड़ा दुख का कारण है एक्सपेक्टेशन। हम कुछ सोचते हैं कि ये पति को काम है कि वो मेरे इमोशन को समझ जाए, ये पत्नी का काम है कि वो समझ जाए कि मुझे कब चाय की इच्छा है ना। पत्नियों को बर्थडे की ज्यादा चिंता रहती है, पतियों को ऑफिस से आने के बाद चाय की ज्यादा चिंता रहती है। मतलब ये अपने आप समझ जाए, बोलना ना पड़े। वेडिंग एनिवर्सरी बोलना नहीं चाहिए। अब अलग हर एक के अलग अलग इमोशन है। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है घर छोटी छोटी चीजों के, जितना हम कम एक्सपेक्ट रखेंगे, पति पत्नी छोड़ दीजिए, दुनिया में किसी के भी साथ, क्योंकि सामने वाला अंतर्यामी नहीं है, उसकी अपनी चीजें हैं, जितना कम एक्सपेक्टेशन होगा उतना सुंदर लाइफ होगा। दूसरी और एक दो चीज करके बात को समाप्त करेंगे। कभी भी हम जब पति पत्नी होते हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार तो जरूरी है, प्यार हो ना हो रेस्पेक्ट बहुत जरूरी चीजें हैं। उस रेस्पेक्ट में कभी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। प्यार तो एक इमोशनल चीज है, कभी होता है कभी नहीं होता है, बदलता रहता है। पर रेस्पेक्ट में अगर कंप्रोमाइज हुई तो बहुत बड़ा खतरा होता है। कभी भी एक दूसरे को रेस्पेक्ट देने में, रेस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है कि सर मैडम बुला के आप बुलाते रहेंगे, आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए उनके प्रति, एक दूसरे के प्रति। कभी भी इस मामले में कंप्रोमाइज नहीं करें, वो जरूरी है। कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। जनरली भारतीय पुरुषों के अंदर ये सोच रहता है, वेस्ट में तो काफी बदलाव आ चुका है पर इंडियन माइंड मेल माइंड सेट में अभी थोड़ा टाइम लगेगा चेंज होने में, कि स्त्री कुछ भी हो मेरे से तो थोड़ा कम, जो कम है, ज्यादा रिस्पेक्ट मुझे मिलना चाहिए, उसको कम मिलना चाहिए। ये किसी भी कारण से ये जो माइंड सेट बना है, इट विल टेक टाइम टू चेंज। ये इनह्यूमन नेचर है, ये कोई ह्यूमन नेचर नहीं है। किसी भी कारण से हमारे कल्चर में या दुनिया में हर कल्चर में आया, पर धीरे धीरे लोग जैसे जैसे पढ़े लिखे होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, ये बदलता है। एक दूसरे को कभी भी छोटा समझने की गलती मत करिएगा। दोनों को एक तरह के, जितना मैं अपने आप को सम्मान करता हूं मुझे उतनी अपनी पत्नी से करने की जरूरत है, जितनी पत्नी अपने आप से सम्मान करती है उतना अपने पति से करने की जरूरत है, न ज्यादा न कम। ये पति परमेश्वर बनने की जरूरत नहीं, न स्त्री को देवी बनने की जरूरत नहीं है। सिंपल रियलिस्टिक बात है, एक दूसरे को आज ए ह्यूमन बींग रेस्पेक्ट करना सीखें। परमेश्वर की परमेश्वर परमेश्वर रहने दीजिए, देवी को देवी रहने दीजिए। ये बड़ा आर्टिफिशियल और बड़ा हिपोक्रेटिक चीजें होती हैं। नॉर्मल आप अगर एक अपने पार्टनर को एक जेन्युइन ह्यूमन रेस्पेक्ट देते हैं, दैट्स एनफ। कभी कभी हम वो नहीं कर पाते हैं और वो प्रॉब्लम का कारण बनता है। बिंग और लास्ट में छोटी सी चीज, जो आदमी खुद खुश नहीं है, जो व्यक्ति खुद से खुश नहीं है, वो किसी को भी खुशी नहीं दे सकता। अगर आप एज एन इंडिविजुअल अपने आप से खुश नहीं है, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। पहले खुश रहना सीखिए, अपने आप को खुश रखना सीखिए, तो नेचुरली आपसे जो भी व्यवहार होगा, जो भी दूसरे के साथ आप डील करेंगे, जरूरी नहीं कि आपके स्पाउस हो, आपके चिल्ड्रेन हो, आपके नेबर हो, या आपके फ्रेंड्स हो, या आपके शत्रु हो, या आपके ऑफ कॉलीग हो, जैसा भी आप व्यवहार करेंगे, जरूर आप जैसा भी व्यवहार करेंगे वो खुश होगा। दुखी आदमी ही दूसरों को दुख देता है। आप हम कितने अपने आप को खुश बोलें, अगर हम दूसरों को दुख देते हैं, इसका मतलब है कि ये सिम्टम है कि मेरे अंदर अपने लिए भी सुख नहीं है। सुखी बनने की कोशिश करिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, फिर देखेंगे आपके साथ रहने वाले लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। आखिर में अथर्ववेद के एक मंत्र कह के बात को समाप्त करते हैं। दो मंत्र है, ये खूबसूरत परिवार की चित्रण है, एक खूबसूरत परिवार को डिस्क्राइब करता है अथर्ववेद के दो मंत्र। अनुप्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, जाया पत्ये मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम, मा भ्राता भ्रातरम द्विक्षन मा स्वसार मुतस्वसा, सम्यम च सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। वो खूबसूरत परिवार जहां बच्चे अपने माँ बाप की बातों को सुनते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, जहां पति और पत्नी एक दूसरे से मीठा बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, आप कितना रेस्पेक्ट करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना केयर करते हैं, वो सब एक तरफ होता है। एक तरफ होता है कि आप किस वे में उसको कन्वे करते हैं। अगर उसमें मिठास ना हो, उसमें अगर वो प्यार ना झलके, आपकी वाणी में अगर कड़वाहट है, तो सारे के सारे रिलेशनशिप खराब होता है। ज्यादातर हमारे आपकी लड़ाइयां इसीलिए हो, आने के लिए मूड खराब करके बोलने की जरूरत नहीं है। खुश होकर भी हम बोल सकते हैं कि सब्जी में नमक ज्यादा है, सब्जी में नमक ज्यादा है, इस बात पर घर में लड़ाई इसीलिए होती है। द वे वी आर कन्वेइंग इट, दैट्स द हार्ड वे। अगर उसमें मिठास, इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं रिश्ते में, व्यवहार में और वाणी में मिठास बड़ा जरूरी है। भाई भाई से प्रेम करे, बहन बहन से प्रेम करे, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिठास में बोले, वो एक खूबसूरत परिवार बनता है। इसी अथर्ववेद के मंत्रों के साथ आज इस बात को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि हमारे आपके जीवन खुशनुमा है तो बना भी रहेगा। ओम शांति शांति शांति।